हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। मिस्टर दत्त ने फिर उन सबको मीटिंग रूम में चलने का इशारा किया। मीटिंग रूम में आते ही टीम फिर से अलर्ट हो चुकी थी। सब जगह पर जाकर बैठ चुके थे, जबकि आंशी आगे मिस्टर दत्त के साथ खड़ी थी। मिस्टर दत्त ने सीरियस चेहरा बनाया और आंशी की तरफ इशारा करके कहा, सच कहूँ तो जब मैं इससे पहली बार मिला था और आज मिल रहा हूँ, दोनों बार में काफ़ी फ़र्क आ गया है। सच में ये काफ़ी स्ट्रांग हो गई है और उसी को देखते हुए मैं आंशी को वो जो करना चाहती है उसकी इजाज़त दे रहा हूँ। आई थिंक अब आंशी पूरी तरह तैयार है। और किस बात के लिए तैयार है ये? मिस्टर जिंदल और अमन एक साथ बोले। मीटिंग रूम में मौजूद हर एक शख्स के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। विधिक के पास जाकर उसके अगेंस्ट प्रूफ इकट्ठा करने के लिए, मैं इसे फोर्स नहीं कर रहा हूँ, इसने ये डिसीजन खुद लिया है, मिस्टर दत्त ने जवाब दिया। इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, लावण्या पहले ही बीच में बोल पड़ी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम जिसके पास जाने की बात कर रही हो वो कोई आम इंसान नहीं है, वो विधिक राणा है। मैंने पिछले दिनों उसे काफी करीब से जाना है। वो इंसान गुस्से में किसी की भी जान ले सकता है और तुम्हारी सच्चाई पता चली तो सबसे पहले तुम्हारी जान लेगा। कोई और मना करता, उससे पहले लावण्या ने ही मना कर दिया था। हालांकि वो आंशी को पसंद नहीं करती थी, पर वो ये भी नहीं चाहती थी कि आंशी जानबूझकर किसी मुसीबत में पड़े। पहली बार ही सही, लेकिन मैं भी लावण्या की बात से एग्री करता हूँ, जस बोला। विधिक का बिहेवियर काफी अनप्रिडिक्टेबल है। आंशी उसके पास सेफ नहीं रह पाएगी, वो उससे प्यार करता है। अगर ये उसके पास गई तो उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी। इसकी जगह अगर कोई ट्रेड सीक्रेट एजेंट होता तो बात अलग होती। मुझे भी आंशी का विधिक के पास जाना सही नहीं लग रहा है, मिस्टर गुप्ता ने भी अपना पक्ष रखा। सब अपनी तरफ से आंशी को मना ही कर रहे थे। मिस्टर दत्त ने अमन और मिस्टर जिंदल की तरफ देखा, जिनके चेहरे से साफ था कि वो भी आंशी को वहाँ भेजने के पक्ष में नहीं है। अमन ने मिस्टर दत्त की तरफ देखकर कहा, आपने किस बेसिस पर ये डिसीजन लिया है सर, और आपको ये क्यों लगता है कि ये आप पूरी तरह तैयार है? मुझे तो इसके बिहेवियर में 1% भी चेंज नहीं लग रहा। ये आज भी उतनी ही चाइल्डिश है और किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेती है, बोलते हुए अमन की आवाज में गुस्सा साफ जाहिर हो रहा था। अमन के नोट की वजह से आंशी पहले से ही गुस्से में थी, तो उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं, जबकि मिस्टर जिंदल ने आंशी की तरफ देखकर कहा, जितना कहा है उतना करो, तुम्हें उससे दूर रहना है, तुम्हें यहाँ पर हम सब की सिक्योरिटी के बीच रहना है तो अच्छी बात है, वरना मैंने तुम्हारे एडमिशन की फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, स्विट्जरलैंड में जाकर अपनी स्टडीज कम्प्लीट करो, विधिक को हम देख लेंगे, ये तुम्हारा काम नहीं है। मिस्टर दत्त ने मिस्टर जिंदल की बात का जवाब देते हुए कहा, सिर्फ यही है जो उसे हैंडल कर सकती हैं। आपको यकीन नहीं होगा आंशी ने क्या किया है। उसने विधिक को कन्विंस कर लिया है कि वो इंडिया में बम ब्लास्ट करवाने वाले इंसान को ही जान से मार दे और इस काम से पीछे हट जाए। हम विधिक को अच्छे से नहीं जानते, पर ये बात तो साफ है कि अगर वो कोई काम अपने हाथ में लेता है तो उससे पीछे नहीं हटता और उसको सक्सेसफुली पूरा भी करता है। मिस्टर दत्त ने अभी अभी जो कहा था उस पर उनमें से किसी को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने आंशी की तरफ देखा तो आंशी ने हाँ में सिर हिला दिया। आंशी ने अमन की तरफ देखकर कहा, कल मैंने विधिक से मीटिंग की थी और तभी मैंने उसे ऐसा करने के लिए कहा। उसने मुझसे 3 दिन का टाइम दिया है। बदले में मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं 3 दिन बाद उसके पास चली जाऊंगी। मेरे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है। आई होप आप मेरी बात समझोगे और मुझे अच्छे से ट्रेंड कर दोगे। आई प्रॉमिस मैं आपका मिशन फेल नहीं करूंगी और विधिक के खिलाफ सबूत लेकर आऊंगी। मुझे आंशी के डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले 3 दिनों तक ये यहाँ पर रह सकती है और टीम में हर एक मेंबर अपने हिसाब से आंशी को ट्रेनिंग देगा। मिस्टर दत्त ने भी अपना आखिरी फैसला सुना दिया था और फिर वहाँ से चले गए। आंशी अच्छे से जानती थी मिस्टर दत्त के हटते ही अमन और मिस्टर जिंदल उसे अच्छे से डांटने वाले हैं, इसलिए वो भी तेज कदमों से चलकर उनके पीछे चली गई। उन दोनों के जाते ही मिस्टर जिंदल ने अमन की तरफ देखकर कहा, मेरी बात नहीं मानने वाली वो, लेकिन तुम तो उसे समझा ही सकते हो। आपकी बेटी होकर आपकी बात नहीं मान रही तो मेरी बात क्यों सुनेगी? आपको देख नहीं रहा वो मुझसे नाराज है, अमन ने चिढ़कर जवाब दिया। वैसे ब्रो आपने बताया नहीं आंशी आपसे क्यों नाराज है, कहीं आपसे नाराज होकर ही उसने ये डिसीजन तो नहीं लिया, जस ने स्माइल करते हुए कहा। उसकी ये स्माइल अमन को और चिढ़ा रही थी। उसने जस की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से बाहर चला गया। अमन मीटिंग रूम से बाहर निकल ही था कि तभी सिक्योरिटी एजेंसी में एक बड़ा सा पार्सल आया था। पार्सल को चेक करने के बाद पता चला था कि उसमें किसी तरह की बम या ऐसी वैसी चीज नहीं पाई गई थी, लेकिन वो काफी भारी था। उस पार्सल में कुछ और नहीं बल्कि दिव्याना की लाश थी, जो विधिक ने पैक करके भिजवाई थी। पार्सल आने की खबर पूरे एजेंसी को पता चल गई थी, इसलिए उसको खोलते वक्त वहाँ मौजूद हर एक शख्स उसके इर्द गिर्द खड़ा था।